नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स गिरीश बबूना जी। गिरीश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो।
शुक्रिया शशांक।
तो जो बड़ी खबर है हमारे पास वो बिहार से ही आ रही है। इंडियन टीम ने शानदार तरीके से जापान को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
जी, पिछले साल की चैंपियन है, बैक टू बैक पिछले साल रांची में वो चैंपियन रही और इस बार राजगीर में। तो 2-0 का आंकड़ा भारत के पक्ष में रहा और कल उनका फाइनल मुकाबला चीन से होगा।
जी, चलिए विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे इन खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार में महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जापान को हराकर फाइनल में पहुंचा। अनुपमा उपाध्याय चाइना ओपन मास्टर टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत और मलेशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। और तमिलनाडु तथा मणिपुर 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के आखिरी दौर में पहुंचे। तो शुरुआत हॉकी से ही करते हैं। बिहार में महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 2-0 से हराया। नवनीत और लाल सेरियामी ने 1-1 गोल किया। कल फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। पहले सेमीफाइनल में चीन ने मलेशिया को 3-1 से हराया और इससे पहले दक्षिण कोरिया ने थाईलैंड को 3-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। तो क्या कुछ रहा भारत के सेमीफाइनल मैच का हाल, सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
पहले 3 क्वार्टर में दर्जन भर से अधिक पेनल्टी कॉर्नर गंवाने के बाद भारत ने आखिरी क्वार्टर में 2 गोल करके जापान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले 3 क्वार्टर गोल रहित रहने के बाद चौथे क्वार्टर के दूसरे मिनट में दीपिका को जापानी डिफेंडर द्वारा बाधा पहुंचाए जाने पर भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे नवनीत ने आसानी से गोल में बदला। आखिरी सीटी बजने से 5 मिनट पहले सुनेलिटा से दाहिने फ्लैंक से मिले सटीक पास को गोल में बदलकर लाल रेमिसियामी ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया। जापान को मैच का एकमात्र पेनल्टी कॉर्नर 59वें मिनट में मिला, जिसे भारतीय गोलकीपर बीछू देवी ने गोल में नहीं बदलने दिया। मैच में पहले 2 क्वार्टर में भारतीय टीम को 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले और 13 बार टीम जापानी सर्कल में भी घुसी, लेकिन गोल नहीं हो सका। गेंद पर नियंत्रण के मामले में भी भारतीय टीम आगे रही, लेकिन फिनिशिंग तक नहीं ले जा पाने से डगआउट के पास खड़े कोच की हताशा साफ नजर आ रही थी। आखिरी ग्रुप मैच में जापान को 3-0 से हराने वाली भारतीय टीम को पूरे मैच में 16 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन एक पर भी गोल नहीं हो सका। ऐसे में चीन के साथ कल होने वाले फाइनल से पहले कोच हरेंद्र सिंह के लिए ये चिंता का सबब होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
तो चिंताओं पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा सुन लेते हैं कि कप्तान सलीमा टेटे ने मैच जीतने के बाद क्या कहा।
हमारा टारगेट यही था, हमें उनको पीसी नहीं देनी, पर अगर आप खेलोगे तो पीसी तो आप कोर्स बनाएंगे। तो हमारा डिफेंस बहुत अच्छी थी, हमारी जैसे सर्कल में बहुत कम उन्होंने गया, पर उनकी डिफेंस बहुत अच्छी थी और हमने अपने स्कोर करने के लिए हमने पूरे अपने जुट हो गए, मतलब जैसे डी में जा रहे थे पर हमारे स्कोर नहीं रहा था, उसके बाद हमने अपरेट नहीं हो रहे थे जैसे गोल नहीं हो रहा है बोल के, पर हमें कंटिन्यू 1 गोल के लिए गए, फिर फाइनली मिल गया और फाइनल विन तो विन होता है। अब तो नेक्स्ट मैच में हमारा टारगेट यही कि हम पीसी में और ज्यादा काम करेंगे जैसे वीडियो लेकर।
और इसके अलावा दर्शकों की अपने खुशी उन्होंने कैसे जाहिर की, ये भी सुन लेते हैं।
इंडिया सेमीफाइनल में से जीत गया और फाइनल की ओर चला गया, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी इंडियन टीम को, वी विल विन पक्का पक्का श्योर, थैंक यू। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्साइटमेंट, अंतिम तक पहली बार इंडिया थर्ड क्वार्टर तक कुछ भी नहीं गोल किया था, बहुत सस्पेंस बढ़ गया था कि अब क्या होगा, लेकिन अचानक इंडिया को जो पेनाल्टी स्ट्रोक मिला एक तरीके से जीवनदान मिल गया और हम लोग पूरी तरीके से जोश से भर उठे और इंडिया पहला गोल किया उसी समय से लगा कि हम लोग जीत गए।
तो गिरीश, जो समस्या अभी भी बनी हुई है पेनाल्टी कॉर्नर पे गोल ना कर पाना, चाहे पुरुष टीम हो चाहे इधर महिला टीम हो।
बिल्कुल, और ये कोच हरेंद्र सिंह की सबसे बड़ी चिंता भी है और वो इसी पर वर्क कर रहे हैं। और आज का जो मैच था भारत बनाम जापान, उसमें मैं कहूँगा भारत बनाम जापान की बजाय मैं कहूँ भारत बनाम उनके गोलकीपर यू कुडो, जिन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन बचाव किए और भारत को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया। वो तो शुक्र है कि जब संगीता का रिवर्स पास वो दीपिका को मिला और फिर वो सर्कल में लेके आई, जहाँ पर फिर जापानी जो डिफेंस प्लेयर थी उन्होंने उस पर धक्का दिया और वो फिर रेफर पे गया। रेफर में भी 50-50 एक चांस था, ऐसा नहीं था कि एक पक्ष भारत के तरफ आ गया, लेकिन भारत को इसका फ़ायदा मिला और पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए हमने गोल किया। तो आपकी रिपोर्ट में सबसे अच्छी बात थी कि आपने गोल का जो श्रेय है सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं दिया, पूरी टीम को दिया। उसी तरह लाल सिंह यामी ने जो गोल किया उसमें भी जो सबसे बड़ा जो वहाँ पर लाल श्रीवाणी जो गोल किया था उसमें सुनीता टोपो जो 17 साल की है वो भी आपकी दाई दिशा से आई और फिर वहाँ से पास करके वो फील्ड गोल किया आखिरी में 2 गोल। लेकिन अगर ये 2 मौके नहीं बन जाते तो एक समय होता है कि भारत पेनल्टी शूटआउट के जरिए फिर वहाँ फाइनल में पहुँचता। तो ये सारी जो बातें हैं कप्तान और कोच के लिए पूरी टीम के लिए चिंता की बात है। कल चाइना से मुकाबला होना है, चाइना हमसे रैंकिंग में बेहतर टीम है, हालांकि हमने उनको 3-0 में लीग मुकाबले में हराया है, लेकिन 3-0 की बात ना करें यहां पर कि वो टीम काफी अभी भी जो है एक उनकी एक्सपीरियंस काउंट करती है। एक जो चाइना के पक्ष में जो एक आज जो रहा है मैं आपको बताऊं शशांक, उनकी जो बेस्ट प्लेयर थी वो मलेशिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल हो रहा था वहाँ हेड इंजरी हुई, हालांकि इंजरी थी मुझे बड़ी नहीं दिख रही, लेकिन उसका एक हो सकता है कि आज रात में असेस हो कि क्या कंकसन टेस्ट में वो सही है या नहीं है, तो फिर भारत का उसका लाभ मिल सकता है।
चलिए तो कल होने वाले फाइनल में आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं गिरीश, और टीम को कैसे आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि कहां पर क्या करें वो?
देखिए सबसे पहली तो सजेशन ये है कि जो पेनल्टी पीसी जो कन्वर्जन नहीं हो रहा है वो कन्वर्जन तब होगा जब आप बॉल को टैप करेंगे रोकेंगे, वहां आपकी गेंदें नहीं रुक रही है, पुश करने के बाद आपकी आपकी कप्तान आ रही है वो पुश कर रही है, लेकिन जो सर्कल में जो हमारे खिलाड़ी हैं वो गेंद को रोक ही नहीं पा रहे। पिछले मैच जो कल जापान के खिलाफ हुआ था वहां भी आखिरी क्षणों में यही परेशानी देखने को मिली थी। तो पहले कोच को समझाना पड़ेगा कि आराम से ठंडे दिमाग से आप पहले बॉल को होल्ड कीजिए, फिर उसके बाद ही तो पुश कर सकते हैं। आप बॉल को होल्ड नहीं करेंगे वो 13 पीसी मिल जाए, 50 पीसी मिल जाए, वो कन्वर्जन रेट 0 हो रहेगा
जी। और दर्शकों का उत्साह तो हमें देखने को मिल रहा है, हाउसफुल शो जा रहे हैं बिहार में कहीं ना कहीं।
बिल्कुल, पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता राजगीर में हो रही है, पूरी बिहार सरकार और भारत सरकार और हॉकी इंडिया उसमें लगी हुई है, तो इस लिहाज से छोटे सेंटर अब हॉकी इंडिया लीग जब होगी तो राउरकेला और रांची इस 2 जगह पर महिला और पुरुष वर्ग के मैचेस खेले जाएंगे, तो वहां भी एक दर्शकों की संख्या अच्छी आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो अब महिलाओं की जो लीग आ रही है पहली बार उसमें 4 टीम होगी और वहां से हमें पुल बड़ा मिलेगा, सिर्फ हम 20-25 खिलाड़ी के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। हमारे अगले साल से आप देखेंगे जब भी महिला टीम खेलेंगे, हरिंदर की कोशिश भी रही है, इसलिए उन्होंने इतना अच्छा लुक्रेटिव जॉब US में छोड़ के वो आए और इस टीम के साथ जुड़े। अभी वो बैंगलोर में कोचिंग कैंप कर रहे थे, वहां पर एक तरह से बूट कैंप लगाया, आर्मी कैंप जैसे आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक समय लगाया था, वैसे ही एक बूट कैंप उन्होंने लगाया है और वहां पर वो हर तरह की परिस्थितियों से टीम को आर पार करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है, हम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किए लेकिन इसका अगले 4 साल के लिए उनके पास एक रोड मैप है।
चलिए अब हॉकी से निकलते हैं और बैडमिंटन का रुख करते हैं, वहां भी एक युवा खिलाड़ी ने बड़ा कमाल किया है। अनुपमा उपाध्याय चाइना ओपन मास्टर टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अनुपमा ने दुनिया की 15वें नंबर की खिलाड़ी अमेरिका की बेई वेन झेंग को कड़े मुकाबले में 21-17, 8-21, 22-20 से हराया। तो अपने से कहीं ऊपर के सीडेड खिलाड़ी को हराना युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा बूस्टअप कहीं ना कहीं देता होगा गिरीश।
बिल्कुल, बहुत बड़ा ये उलटफेर है। आप ये देखिए, उन्होंने जो विंग जेंग को हराया वो USA की है, उससे पहले वो सिंगापुर के लिए 10 साल वो खेल चुकी है, 2003 से 2013 तक सिंगापुर के लिए खेली और फिर उसके बाद वो जो है वो US के लिए अब प्रतिनिधित्व कर रही है। अब उनका मुकाबला जो है परसों होगा जापान की नासुकी निदिरा से, जो वर्ल्ड रैंकिंग 26वें हैं। हालांकि ये दोनों आपस में पहली बार मिलेंगे, लेकिन अब सब हमारे श्रोताओं की नजर होनी चाहिए आने वाले कल के मुकाबले पे।
जी, कल के मुकाबले में क्या कुछ खास है उस पर पहले ये रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं।
लंबे समय से किताब की तलाश कर रहे भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। भारत की शीर्ष डबल्स टीम सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के जरिए वापसी करेगी। दुनिया की पूर्व नंबर एक टीम के सदस्य सात्विक कंधे की चोट के कारण पेरिस ओलंपिक के बाद से प्रतिस्पर्धा से दूर हैं। दोनों आर्कटिक ओपन, डेनमार्क ओपन और चाइना ओपन नहीं खेल सके थे। पिछली बार उपविजेता रहे सात्विक और चिराग कल पहले दौर में चीनी ताइपे के यांग पोस्टवान और ली जे हुई से खेलेंगे। वहीं पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन खराब फॉर्म से उभरकर जीत की राह पर लौटना चाहेंगे। अगस्त में पेरिस ओलंपिक के बाद दोनों ने लंबा ब्रेक लिया था, लेकिन खोया फॉर्म हासिल नहीं कर सके। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में हारने के बाद लक्ष्य आर्किटेक्ट सुपर 500 और डेनमार्क ओपन में जल्दी हार गए। इसके बाद कुमामोतो मास्टर्स जापान में पहले ही दौर में बाहर हो गए। लक्ष्य कल पहले दौर में मलेशिया के 7वीं वरीयता प्राप्त ली जी जिया से खेलेंगे। सिंधु पहले दौर में थाईलैंड की सुपनिदा कैटथोंग से खेलेंगी। महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली का सामना चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी लियू सेंग सू और तान निंग से होगा। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो यहाँ पे हमें लक्ष्य भी दिखेंगे, सिंधु भी दिखेंगी और हमारी डबल्स की जबरदस्त जोड़ी भी रहेगी।
तो लक्ष्य सेन ली जिया के साथ खेलेंगे जो मलेशिया के है, और अपने श्रोताओं को याद करा दे शशांक कि वो ली जिया वही खिलाड़ी है जो पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन को ब्रॉन्ज मेडल पे रोक दिया था। विक्टर एक्सल सेन से वो सेमीफाइनल में हार गए थे और उधर फिर उनके पास एक मौका था ब्रॉन्ज मेडल जीतने का, और इस बार भारत कोई भी मेडल बैडमिंटन में नहीं जीत पाया। तो वहाँ पर एक पहला जो गेम है 21-13 से जीतने के बाद, फिर 16-21 और 11-21 से वो हार गए। तो ये मलाल लक्ष्य सेन के दिमाग में होगा, जब कल वो आमने सामने होंगे तो एक बदले की भावना से उनको खेलना चाहिए।
चलिए हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हमें दिखे। और फुटबॉल की ओर रुख करें तो भारत और मलेशिया के बीच कल हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच जो है वो 1-1 से ड्रॉ रहा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
भारतीय फुटबॉल टीम इस साल जीत का खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई। भारत के लिए ये साल का 11वां मैच था और टीम को इस साल एक भी जीत नसीब नहीं हुई। इस दौरान उसे 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा और 5 मैच बराबरी पर छूटे। मैच के 19वें मिनट में पाउलो जोसू के शुरुआती गोल से मलेशियाई टीम ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी। विश्व रैंकिंग में 133वें पायदान पर काबिज मलेशिया के खिलाफ एक गोल से पिछड़ने के बाद विश्व रैंकिंग में 125वें स्थान पर काबिज भारत ने हमले तेज किए। प्लेयर ऑफ द मैच ब्रेंडन फर्नांडिस के कॉर्नर से लगाए गए किक को राहुल भेके ने 39वें मिनट में हेडर से गोल कर मैच में भारत को बराबरी पर ला दिया। इसके 2 मिनट बाद भारतीय टीम को एक और कॉर्नर मिला, लेकिन अनवर अली का हेडर गोल पोस्ट से दूर निकल गया। भारतीय टीम ने जीत की तलाश में दूसरे हाफ में हमले जारी रखे, लेकिन टीम मलेशिया की रक्षा पंक्ति को भेदने में विफल रही। वहीं भारतीय रक्षा पंक्ति ने भी दूसरे हाफ में बेहतर तालमेल दिखाते हुए मलेशिया को बढ़त लेने से दूर रखा। नए मुख्य कोच मनोलो मार्क्वेज की देखरेख में टीम का ये 4th मैच था, लेकिन उन्हें भी जीत के लिए और इंतजार करना होगा। भारत का अगला मुकाबला मार्च 2025 में होने वाले 2027 एशियाई कप क्वालिफायर में होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
फुटबॉल की एक और खबर हमारे पास है। तमिलनाडु और मणिपुर 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। तमिलनाडु ने ग्रुप जी के अपने अंतिम मैच में मेजबान आंध्र प्रदेश को 8-0 से हराया। वहीं मणिपुर ने अगरतला में ग्रुप डी के अपने मैच में त्रिपुरा को 2-0 से पराजित किया। क्रिकेट का रुख कर लेते हैं तो शेफाली वर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला एक दिवसीय 16 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। तो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रही थी शेफाली और इस साल 6 मैचों में सिर्फ 108 रन उनके खाते में रहे।
हाँ बिल्कुल, और उसमें भी वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 56 कुल रन बनाए, तो विकेट पे टिक के नहीं खेलना। ओडीआई अब ऐसा नहीं है कि आप आके ताबड़तोड़ खेले, वहां भी 50 ओवर का गेम होता है, 20 ओवर का नहीं है। वहां भी आपको एक अच्छा प्लेयर चाहिए जो लंबी पारी खेल सके। लेकिन और उनका आखिरी अर्धशतक जो है ओडीआई में 2022 में आया था, तो इस लिहाज से देखते हुए मतलब अब का एक बार फिर से उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऋचा घोष उनकी 12वीं की परीक्षा खत्म हो गए हैं, तो वापसी वो कर रही है टीम में। और उसके अलावा जो हरलिन देओल है उनकी भी वापसी हो रही है। दिसंबर 2023 में घुटने की चोट से अब वो उबर के वापस कर रही है। तो इस लिहाज से भारतीय टीम तो कई लोगों को जो मौका नहीं मिल रहा, शेफाली वर्मा के पास लंबा एक अनुभव है, वापस वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे और सिलेक्टर्स को मौका दे फिर से।
चलिए गिरीश, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से आपने सभी खेल खबरों पे हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।
और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। बिहार में महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जापान को हराकर फाइनल में पहुंचा। अनुपमा उपाध्याय चाइना ओपन मास्टर्स टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत और मलेशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। और तमिलनाडु तथा मणिपुर 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के आखिरी दौर में पहुंचे। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को बने दीजिए अनुमति। आप बने रहिए एफएम गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।